लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रताड़ना के शिकार बने ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों को संपूर्ण कलीसिया की प्रार्थनाओं एवं भौतिक सहायता द्वारा समर्थन और संबल प्राप्त हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, याकूब के ईश्वर का जय जयकार करो। गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 81वें भजन के प्रथम 5 पद। इन पदों के पाठ से ही विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः स्तोत्र ग्रंथ का 17 पदों वाला 81वां भजन शिविर पर्व यानी कि तंबुओं के पर्व पर गाया जाने वाला आसाफ द्वारा रचित गीत है। शिविर पर्व मनाने के कई कारण थे। सर्वप्रथम तो यह नई फसल के कटने पर मनाया जाता था। द्वितीय, यह मिस्र की दासता से मिली मुक्ति हेतु ईश्वर के प्रति धन्यवाद का पर्व है। और फिर इजरायली लोग ग्रीष्म ऋतु के समापन और वर्षा के आरंभ होने के उपलक्ष में इस पर्व को मनाया करते थे। शिविर पर्व भक्त समुदाय के लिए ईश्वर से विशिष्ट अनुग्रह की याचना का भी पर्व है। इस अवसर पर वे वर्षा के आने के लिए तो प्रार्थना करते ही थे, क्योंकि वर्षा के बिना उनका जीवन असंभव था। किंतु इसी प्रार्थना में वे प्रभु से यह भी याचना करते थे कि वे उन पर अपने आत्मा को प्रवाहित करें। श्रोताओ, कोई भी पर्व हो, उसका समारोह किसी महत्वपूर्ण या विशेष घटना के स्मरणार्थ मनाया जाता है। पर्वों पर गायन, वादन, खुशियां मनाना स्वाभाविक है। इसराइलियों के शिविर पर्व में भी यही होता था। साथ ही इसराइली लोग शिविर पर्व के मनाए जाने को ईश इच्छा मानते थे। गौर करें कि 81वें भजन के शब्द आनंद का गीत गाओ, ईश्वर का जय जयकार करो आदि सभी बहुवचन में किए गए आह्वान हैं। यहाँ संपूर्ण समुदाय को पर्व मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी को ईश्वर की स्तुति करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। पर्व चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म के लोगों का हो, पर्व एक सामुदायिक घटना है। वह एकल व्यक्तियों की घटना नहीं है, वह सदैव एक साथ मिलकर मनाया जाता है। और ऐसा ही प्राचीन व्यवस्थान के युग में भी था। 15 दिनों तक जारी रहने वाला उत्सव मनाना नए चांद के साथ डफली, वीणा और तानपुरा बजाकर शुरू होता था, तथा पूर्णिमा के दिन नए मास की तुरही से उसका समापन होता था, क्योंकि यही इज़राइल का विधान है, यही याकूब के ईश्वर का आदेश है। श्रोताओं, यही याकूब के ईश्वर का आदेश है शब्दों से भजनकार भक्त समुदाय के समक्ष यह स्पष्ट कर देता है कि शिविर पर्व मनाना ईश्वर का आदेश है, यह ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। भजनकार का कहना है कि पर्व मनाना इसलिए आवश्यक है ताकि मानव यह अनवरत ध्यान में रखे कि प्रभु ईश्वर ही उसके सृष्टिकर्ता, उसके पालनहार और उसके उद्धार करता है, तथा उनकी स्तुति और आराधना करना मनुष्य का दायित्व है। उनकी स्तुति और आराधना कर ही मनुष्य ईश कृपा का भागी बनता है।
वंदना वंदना करते वंदना
वंदना
आगे 81वें भजन के 6वें, 7वें और 8वें पदों में भजनकार ने यह संदेश देना चाहा है कि हालांकि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारी प्रार्थना देर से सुनी जाती है, तथापि जब जब मनुष्य ने ईश्वर को पुकारा तब तब उन्होंने उसकी पुकार सुनी और उसे उसके संकटों से मुक्ति दिलाई। ये पद इस प्रकार हैं: जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया, उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए, तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया, मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उत्तर दिया, मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। श्रोताओ, सतही दृष्टि से यदि देखा जाए तो 81वें भजन के रचयिता ने प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ में निहित इजरायली जाति की दास्ता और मुक्ति की कहानी को पढ़ा था और उसी के आधार पर उसने यह गीत रचा। ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक भी है, तथापि कोई भी व्यक्ति, भले ही वह कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी क्यों न हो, प्रभु की स्तुति के लिए तब तक प्रेरित नहीं हो सकता जब तक उसके हृदय में यह भाव प्रस्फुटित न हो। मिस्र की गुलामी से मुक्ति की घटना को पढ़ लेने के बाद भजनकार के हृदय में यह प्रेरणा जागृत हुई कि वह ईश्वर की स्तुति करे तथा संपूर्ण इजरायली समुदाय को ऐसा करने के लिए आमंत्रित करे। उसके मन में यह चेतना जागृत हुई कि वह इजरायली लोगों को याद दिलाए कि प्रभु ईश्वर ने उनके कंधों पर से भार उठाया था, उन्हें यह स्मरण दिलाए कि इजरायली लोग ईश्वर के विरुद्ध बड़बड़ा रहे थे, तब मेघ गर्जन के बीच से प्रभु बोले थे जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिला। भजनकार याद दिलाता है कि हालांकि मरीबा के जलाशय के पास प्रभु ने उनकी परीक्षा ली थी, तथापि सिनई पर्वत को चीर कर निकली ज्वाला के बीच से प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी थी ताकि ईश प्रजा भटक न जाए अपितु अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंच जाए। आगे 81वें भजन के अग्रिम 3 पदों में, यानी कि 9 से लेकर 11 तक के पदों में, भजनकार ईश्वर द्वारा दी गई चेतावनी का स्मरण दिलाता है। वह उन्हें उस क्षण की याद दिलाता है जब ईश्वर ने उनके समक्ष अपने 10 नियम प्रस्तावित किए थे। श्रोताओ, इन पदों की व्याख्या हम अपने अगले प्रसारण में करेंगे। आज का प्रसारण हम इन पदों के पाठ से ही समाप्त कर रहे हैं। 81वें भजन के ये 3 पद इस प्रकार हैं: मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो, इज़राइल मेरी बात सुनो, तुम्हारे बीच कोई पराया देवता नहीं रहेगा, तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं।
वंदना वंदना करते वंदना
वंदना
ये समी आसमां। कमल में
आए हैं चरण कमल में
आए हैं चरण कमल में
आए हैं चरण कमल में
हम चढ़ाते अर्चना
हम चढ़ाते